शांति। आज हम सभी के बीच में डॉक्टर सतीश गुप्ता जी पहुंचे हैं। हमारी बहुत दिल थी कि हमारे बीच में आए और हम सभी को लाभान्वित करे, क्योंकि बाबा ने डबल डॉक्टर बनाया है। और डबल डॉक्टर के साथ साथ भी आप सभी जानते ही हैं, पहचानते ही हैं, हाँ, कि दिल के मरीजों के डॉक्टर। परंतु देखो गीत भी कितना अच्छा अभी बजा, हाँ, कि हमने अपने दिलाराम बाबा को अपनी दिल दे दी, हाँ, तो दिल में तो कोई शिकायत रही नहीं, परंतु हमारी भी दिल करती है और बाबा की भी दिल करती है कि बच्चे बाप समान बन जाए। तो बाप समान बनने के लिए सबसे पहले तो हमको अपने विकर्मों का विनाश करना होगा। तो विकर्मा जीत बनने का जो पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ हम तीव्र गति से कैसे करें, क्योंकि समय की गति आगे बढ़ते हुए समय की पुकार यही कहती है। हम बच्चों के दिल की पुकार, बाबा के दिल की पुकार यही कहती है, हाँ, कि बस अब संपन्न होकर के घर चलना है। तो डॉक्टर सतीश गुप्ता जी अपनी इन सेवाओं में करीबन 21-22 साल से मधुबन में समर्पित रूप से सेवारत हैं और इस ज्ञान मार्ग में अपने 30 साल पूरे कर रहे हैं और आज हम सभी के बीच में हम सभी को लाभान्वित करने के लिए, विकर्मा जीत बनाने के लिए हम सभी के बीच में उपस्थित हैं। ओम शांति।
ओम शांति। आज विकर्मा जीत बनने का यथार्थ पुरुषार्थ सभी जानते हैं। आज की मुरली सभी ने सुनी, किस बात पे थी मुरली? इसी बात पर थी ना, रूहानी यात्रा है ना, रूहानी यात्रा। रूहानी यात्रा से क्या होता है, विक्रम विनाश होते हैं, है ना। विक्रम विनाश होते हैं तो बाबा के साथ वापस घर जा सकते हैं। तो आज हम इस बात पर थोड़ा गहराई से चिंतन करेंगे कि विक्रम विनाश हमें क्या करें, कैसे करें विक्रम विनाश, विक्रम होते क्या हैं और कैसे उनको विनाश कर सकते हैं। सभी को पता है विक्रम क्या होते हैं? विक्रम किसे कहते हैं बताओ? बॉडी कॉन्शियस में जो भी काम करते हैं वो विक्रम कहलाते हैं। कब से शुरू किए हमने विक्रम करने? अभी करने बंद कर दिए? अभी भी कर रहे हैं? तो विनाश भी कर रहे हैं और विक्रम कर भी रहे हैं, तो काम होगा क्या? हाँ, होगा, चलेगा। और अभी अभी विक्रम करेंगे तो क्या होगा? एक का सौ गुना होगा ना। पहले तो एक का सौ गुना, जब बाबा के बच्चे नहीं थे एक का सौ गुना नहीं होता, एक का एक गुना ही होता था। तो अभी क्या करना चाहिए? अगर एक विक्रम किया सौ गुना हो गया, तो विनाश के थोड़े से और बन गए बहुत सारे, तो फिर क्या हुआ? बोझा कम हुआ कि कम ज्यादा हुआ? ज्यादा हो जाएगा ना। तो अभी क्या करना चाहिए? विक्रम विनाश करने हैं तो पहले विक्रम करना बंद करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। करना बंद करना है कि नहीं करना है? चलो आज उसी बात पे हम बात करते हैं कि हमारे विक्रम विनाश कैसे हो, मतलब हम विक्रम विनाश, विक्रम करना कैसे बंद करें और फिर विक्रम आगे कैसे विनाश करें। जो कर्म क्या होते हैं, वैसे सबसे पहले तो कर्म की बात करते हैं। कर्म क्या होते हैं? कर्म खाली हाथ पैरों से कर्म करना ही कर्म नहीं है, किंतु जो भी कर्मेंद्रियां हैं, जो भी पांच हमारी कर्मेंद्रियां हैं, उनके द्वारा जो भी हम कर्म करते हैं वो कर्म कहलाता है। जैसे हम देखना भी कर्म है, कोई चीज हमने देखी वो भी कर्म है। किताब देखते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, ये भी कर्म है ना। नहीं, पढ़ना भी कर्म है, कितना पढ़ना भी कर्म है, कोई भी चीज हमने पढ़ते हैं तो वो भी कर्म है, और सुनना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, खाना भी कर्म है, और देखना भी कर्म। तो मतलब देखना, पढ़ना, सुनना, सुनना, बोलना, खाना, ये भी कर्म है। सोचना कर्म नहीं है, वो सोचना अलग चीज है, संकल्प तो अलग चीज है। तो सोचना कर्म नहीं है, सोचना सोचना है, संकल्प करना, संकल्प बोल कर्म कहलाता है ना। अच्छा, बोलना भी कर्म है, राइट। और हाथ तरफ से जो भी हम करते हैं, शरीर के साथ जो भी करते हैं वो कर्म है। और कर्म की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी हम कर्म करते हैं वो अंदर रिकॉर्ड होता रहता है, जो भी हम देखते हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो अंदर रिकॉर्ड हो रहा है, जो भी हम सुन रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है, राइट। सूंघ रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है। कोई 10 साल पहले कुछ आपने सूंघी होगी ना, वो स्मेल 10 साल पहले आपको आई होगी, 10 साल तक नहीं आई, 10 साल के बाद दोबारा आएगी ना, तो आपको हाँ 10 साल पहले भी वो ये वही स्मेल है जो 10 साल पहले आई थी, है ना। ऐसा होता नहीं होता, कोई चीज देखी होगी 10 साल पहले, वो फाइल खुल जाएगी अंदर से, हाँ 10 साल पहले भी वही चीज देखी थी मैंने, वहां देखी थी, इस बार पहले वहां देखी थी, अभी चीज यहां पे देखी, देख रहा हूं, ये देख रही हूं, पढ़ी होगी तो सुनी ऐसी सुनी होगी, कोई आवाज आपने देखी नहीं है, सुनी है, सिर्फ आवाज सुनी है, कोई चेहरा नहीं देख रहे हो, आवाज आ रही है कहीं से, और वही आवाज 10 साल तक नहीं आई है, दोबारा आ गई, फिर क्या होता है, याद आ जाती ना, हाँ ये आवाज पहले कहीं सुनी है, 10 साल पहले कहीं सुनी थी, मतलब रिकॉर्ड हुई, तभी तो समझ में आया कि दोबारा 10 साल के बाद सुन रहा हूं, मतलब पहली वाली स्मृति बाकी है ना, अंदर रिकॉर्ड है ना। तो ऐसे ही कोई हाथ पैरों से कर्म किया वो भी अंदर रिकॉर्ड हो गया। और अगर विकारों के वश किया, काम विकार के वश में आके किया, क्रोध के वश में आके किया, लोभ के वश में आके किया, मोह के वश में, अहंकार के वश में आके किया, तो विकर्म हो गया। किसी विकार के वश होके, मतलब मैंने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश होके मैं टीवी देख रहा हूं, कोई फोटो देख रहा हूं, कोई मैगजीन देख रहा हूं, कोई किताब पढ़ रहा हूं, किसी व्यक्ति को देख रहा हूं, किसी को आंख दिखा रहा हूं, क्रोध से देख रहा हूं, तो क्या हो गया, विकर्म हो गया ना। किसी व्यक्ति को देखना पाप नहीं है, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, किंतु विकार के वश देखा, तो काम विकार के वश देखा, क्रोध के वश देखा, लोभ के वश देखा, ये मेरी महिमा करे, ये मुझे गाली क्यों देता है, मुझे गाली क्यों देते हैं, ये विकर्म हो गया ना, विकर्म, राइट। अहंकार के वश किसको देखा तो विकर्म बन गया, मैं बड़ा हूं, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो छोटे से हैं, इनको समझ भी नहीं है, छोटे बड़े का भाव रखना भी विकर्म हो गया, राइट। आत्मा छोटी बड़ी होती है क्या? तो ये जो है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश, कोई भी हमने कर्म किया, देखा, पढ़ा, सूंघा, सुना, बोला, खाया भी अगर ना, हमने गुस्से में खाना खा रहे हैं ना, इसने खाना बनाया उसकी फालतू महिमा करके खाना खा रहे हैं, है ना, या खाने की आसक्ति में आके खाना खा रहे हैं, खाना बहुत स्वाद है, आज पहले 2 चपाती खाते, आज 4 चपाती खा ली, नहीं, ये भी विकर्म हो गया। इसलिए बाबा बच्चों की डोज जो थे बाबा के समय में डोज फिक्स होती थी, इतनी चपाती पहना, इतनी चपाती, ये नहीं कि आज सब्जी स्वाद बनी है तो 3 चपाती खा लो या 4 खा लो, जिसके 2 खाता 2 ही खानी है। बाबा कहते थे ये भी विकर्म है, आसक्ति के अंदर का खाना भी पाप है, राइट। फिर इनके बाल बच्चे भी हैं 5 विकारों के, वो भी विकर्म कहलाते हैं। आलस्य के बस, आलस्य एक सबसे देहभान का सबसे बड़ी आदत है, ये तो देहभान की नेचर स्वभाव है, देहभान का स्वभाव है ये 5 विकार। और इनकी आदत क्या है, बॉडी कॉन्शियस की आदत क्या है, जैसे देहभान आएगा आलस आएगा। ब्राह्मणों का नंबर 1 दुश्मन कौन सा है, हमारे अंदर भी काम विकार स्थूल रूप में नहीं है, क्रोध हमारे अंदर स्थूल रूप में नहीं है, लोभ भी इतना लोभ पैसे का लोभ नहीं है, किंतु नाम मान शान का लोभ तो है, नाम मान शान की इच्छा होती ही नहीं होती कि मेरे को लोग पूछें, है ना, मेरा नाम लें, ऐसा इच्छा होती है कि नहीं होती है, क्लास में या बाहर मैंने ये काम किया, लोग मुझे पूछे है ना, पूछ किसकी होती है, पूछ किसकी होती है, बंदर की होती है ना। तो बाबा ने कहा जब तक ये पूछ को आग नहीं लगाई तब तक क्या होगा, लंका जल सकती है, रावण की लंका जलेगी, रावण की लंका जलेगी नहीं। महावीर, हम महावीर तो बन गए किंतु जब तक इस पूंछ को आग नहीं लगेगी तो क्या होगा, लंका जलेगी नहीं। तो ये जो है, तो ये जो लोभ का जो मेन स्वरूप है, ब्राह्मणों में जो स्वरूप है, नाम मान शन का स्वरूप है, राइट, और आलस्य का स्वरूप है ना। मेन जो इसमें हमारे सूक्ष्म स्वरूप में हमारे अंदर विकार है, आलस्य के रूप में, अलबेलापन के रूप में। चलो मुरली है ना, मुरली तो घर में ही पढ़ लेते हैं, आजकल तो टीवी पे आती है ना, पीएम टीवी पे आती है, पीएम टीवी पे सुन लेते हैं, इंटरनेट पे आती है ना, मोबाइल पे टीवी सुन लेते हैं, मधुबन की मुरली सुन लेते हैं। क्लास में जाके क्या करेंगे, इतनी दूर क्लास में जाएंगे, डीजल लगेगा, पेट्रोल लगेगा, टाइम जाएगा नहीं, घर में मुरली सुन लेते हैं। ये केयरलेसनेस है, ये अलबेलापन है। आप घर में, आप टीवी पे खाने की प्लेट आती है, खाना नाश्ता टीवी पे कर लो ना, नहीं ऐसा नहीं आती। ब्रेकफास्ट की तीन फोटो रखो, एक ब्रेकफास्ट की प्लेट रखो उसमें फोटो, एक लंच की रखो, एक डिनर की रखो ना, नहीं अपना खोलो वो फोटो सामने, तो मोबाइल में भी आती ना फोटो, तो खोलो ब्रेकफास्ट की प्लेट आ गई, चलो जी ब्रेकफास्ट चलो हो गया, नहीं लंच हो गया, डिनर हो गया, तीनों टाइम खोलो, एक एक चीज खोलो, हो जाएगी नहीं ऐसे। अच्छा है ना, मेहनत भी नहीं, बनाने की मेहनत भी नहीं, पैसे भी नहीं लगते ना, कितना सहज है खाना खाना ना, ब्रेकफास्ट लंच डिनर करना, नहीं टीवी भी ऐसे बहुत सहज है, वो भी मतलब ऐसे ब्रेकफास्ट करना भी सहज है, क्यों चबाए इतनी मेहनत करें ऐसे फिर चबात के पेट में पचाए, नहीं ये अलबेलापन है, केयरलेसनेस है ना। बाबा की श्रीमत क्लास में आना है, क्लास में आकर क्लास की शोभा बढ़ानी है नहीं? हम क्लास की शोभा है ना, ब्राह्मण एक एक बच्चा क्लास की शोभा होता है ना। और बाबा जिसके द्वारा मुरली, बाबा की किसकी मुरली होती है, बाबा की मुरली है ना, और बाबा की मुरली जो भी बहन हुआ भाई सुनाए, कभी बड़ी बहन सुनाती है, कभी छोटी बहन सुनाती है, कभी कोई भाई भी सुनाता है, गीता पाठशाला में कोई भाई भी सुनाते हैं, कि तो जिस जो भी मतलब सुनाए कि तो बाबा उसके द्वारा साथ साथ पावर भी देता है ये मुरली धारण करने की उस आत्मा के द्वारा, ठीक है। और वो क्लास, वहां की जो क्लास होती है वो एक्चुअली रिकॉर्डिंग रूम है, जैसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ना, हमारे प्रोग्राम से रिकॉर्ड होते हैं ना गॉलीवुड में, तो वहां पर एक साउंड रूम होता है, क्या बोलते हैं, डबिंग रूम बोलते हैं, वहां पे वॉइस रिकॉर्ड होती है, कुछ हमें कुछ प्रोग्राम कुछ हमें रिकॉर्ड करानी होती है आवाज, तो वहां जाना पड़ता है, एकदम साउंड प्रूफ होता है ना, तीन तीन दरवाजे उसके अंदर होते हैं ना, एकदम साउंड, बाहर की साउंड अंदर नहीं आ सकती। तो ये भी जो हमारा जो क्लासरूम है वो साउंड, वो भी क्या है, डबिंग रूम जैसे है, वहां एक्यूरेट रिकॉर्डिंग होती है, हम जो मुरली सुन रहे ना वहां वो वातावरण है, वो वायुमंडल है कि हमारे अंदर रिकॉर्ड हो जाए, क्योंकि मुरली सुनने का महत्व नहीं, मुरली पढ़ने का महत्व नहीं है जब तक हमारे कर्मों में ना आए। ये मुरली ही बाबा की श्रीमत है, मुरली ही बाबा की डायरेक्शन है, मुरली ही बाबा की शिक्षा है, मुरली ही बाबा का फरमान है। तो मुरली हम क्लास में ना जाके ऐसे सुनते हैं तो क्या होगा, ये क्या है, अलबेलापन है, केयरलेसनेस है, आलस है। ब्राह्मणों में इस समय ये इसी कारण से हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे, वहीं खड़े हैं जहां खड़े थे। कई लोग कहते हैं, कई समझते ना कि हम वहीं खड़े हैं, ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं। मैं हाथ नहीं उठवाता हूं पर काफी सारे ब्राह्मण ऐसे हो जाते हैं, स्थिति ऐसी हो जाती है, हम आगे बढ़ते हैं ना पीछे जाते हैं, सब जानते हैं अंदर से। तो ये जो है स्थिति ऐसे किस कारण से बनती है, क्लास में मुझे तो याद है, मुझे तो जब से मैं 30 साल से ज्ञान में चला, 30 साल से ऊपर समय हो गया, मैंने कभी क्लास मिस नहीं की है, बल्कि एक दो बार मैं क्लास मिस की थी मैंने, जब मैं पांडव भवन मधुबन में आया ना तब, बल्कि दिल्ली में मेरी क्लास मिस नहीं होती थी, मधुबन में आया तो मैं क्लास मेरी एक दो बार मैं क्लास में नहीं आया, और मधुबन मैं पांडव भवन की बात कर रहा हूँ, ओम शांति भवन में जब क्लास होती थी, तो हम सुबह सुबह कभी कभी अचानक हम जैसे आ रहे हैं ना हॉस्पिटल से आ रहे हैं, अचानक को पेशेंट की कॉल आ गई, हॉस्पिटल से कॉल आ गई, पेशेंट सीरियस है, हार्ट अटैक का पेशेंट आ गया, सीरियस पेशेंट आ गया, तो अटेंड करने उसमें लग गए, तो हम शाम को दादी से, दादी थी ना, दादी प्रकाशमणि जी थी, तो दादी यहाँ आंगन में बैठी रहती, चांदनी चौक है ना सामने, बीच में उसको चांदनी चौक भी कहते हैं ना, तो दादी वहां बैठी रहती थी शाम को। तो मैं जैसे शाम के टाइम आता था तो दादी कहे बुलाएगी, गुप्ता जी आप सुबह क्लास में नहीं थे। मैं दादी क्लास में, दादी इसलिए ना वो आते आते एक पेशेंट सीरियस आ गया, मुझे जाना पड़ा हॉस्पिटल में, तो पेशेंट अटेंड किया। कितने बजे फ्री हो गए थे पेशेंट से? मैंने कहा दादी 20 मिनट में पेशेंट थोड़ा सेटल हो गया था, मैं फिर फ्री हो गया। फिर मैंने कहा फिर आप क्यों नहीं आए क्लास में? मैंने कहा दादी तब तो क्लास में लेट आना तो बहुत खराब बात होती है, सब सबकी आंख उठती है कि क्लास में लेट आ रहे हैं। नहीं नहीं, क्लास में तब भी आना चाहिए, अगर लेट भी हो गए किसी कारणवश, जेन्युइन कारण कारण लेट भी हो गए तो भी आओ, आखिरी लाइन भी सुनो, धारणा के लिए मुख्य सार भी तो वो भी सुनो। क्लास का अपना महत्व है, क्लास की शोभा हो, क्लास में आओ। दादी से, दादी मैं पीछे आके बैठ गया था। नहीं पीछे क्यों बैठे, आगे आके बैठो, आपकी सीट फिक्स है। तो मतलब ये जो लगन ना, हम कहीं भी बैठे, आगे पीछे कहीं बैठे, क्लास में हमारी, हम क्लास की शोभा है। तो ये जो है हमें ध्यान, तो ये भी विकर्म है, क्लास में ना आना भी विकर्म है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ठीक है, इस बार इसलिए मैं इतनी लंबी, इस बात को लंबा मैंने पूरा कर दिया, ठीक है। क्लास में ना आना भी विकर्म है। किसके वश किया? आलस के वश किया, अलबेलापन के वश किया, यही तो ब्राह्मणों के अंदर आज प्रॉब्लम है। मुझे याद आता है मैं मेरा एमडी का एग्जाम था, एमडी मेडिसिन का ना, थ्योरी एग्जाम वाले दिन तो गया ही था मैं प्रैक्टिकल, मेरा थ्योरी एग्जाम था उस दिन भी, मैं एग्जाम के दिन भी थ्योरी एग्जाम था तो उस दिन मैं गया था मतलब क्लास में, और प्रैक्टिकल एग्जाम था तो प्रैक्टिकल एग्जाम में तो मेरा मतलब इतना डिफिकल्ट एग्जाम होता है, लोग सुबह से पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं, और चार एग्जामिनर होते हैं, और वहां तो मतलब आधे स्टूडेंट फेल होते हैं एमडी मेडिसिन के एग्जाम में ना, फाइनल जो एग्जाम होता है ना प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, तो आधे स्टूडेंट फेल होते हैं, और उसमें से मैं अकेला स्टूडेंट था जो मेरिट था। 19 स्टूडेंट थे, 19 में से मैं अकेला था मेरिट था, मेरा बच्चा भी था ना, एक लौकिक बेटा भी था। तो मुझे तो, और मेरी जिम्मेवारी भी ज्यादा थी, हॉस्पिटल में भी जिम्मेवारी ज्यादा थी, तो उसके बाद भी, पर मेरे मैं कभी मुरली मिस नहीं करता था स्टूडेंट लाइफ में भी, तो डेली जाता था, डेली विदाउट मिस। बच्चे को स्कूल भी छोड़ना होता था, तो 7:45 उसका स्कूल, 3 साल का था वो तो, ठीक है, तो 7:45 स्कूल भी छोड़ना होता था, पर हम सुबह 4 बजे उठते, 4:45 उठते थे, मुंह हाथ धो के और ब्रश करके अमृत वेला करते, फिर दोनों मिलकर खाना बनाते, उसका भी, उस बच्चे का भी खाना पैक करते, उसको नहला भी देते, स्कूल भी छोड़ देते है ना, स्कूल छोड़ के खाना, स्कूल 7:45 को स्कूल छोड़ते, फिर 7:07 बजे तक मुरली में पहुंच जाते, मुरली सुन के तुरंत घर आते, घर आके 2 चपाती खा के 8:30 बजे हॉस्पिटल पहुंचना होता था। कभी मैंने फिर भी एक दिन मुरली मिस नहीं किया, कितना भी प्रेशर रहा। और वो एग्जाम, एमडी का एग्जाम था उस दिन में, मैंने पता है प्रैक्टिकल एग्जाम में, और बाबा ने इतनी मदद की, जो केस मुझे मिला उसमें 3 स्टूडेंट पहले फेल हो चुके थे, लॉन्ग केस पे 3 स्टूडेंट फेल हो चुके थे जो मुझे मिला, और जो मुझे एग्जाम वो दे रहा था तो कहते, वो उसने मुझे बोल भी दिया 3 तो इस पे पहले ऑलरेडी फेल हो चुके हैं, तो आपका 4th नंबर है। जो एग्जाम अलॉट कर रहा था केस, जो लॉन्ग केस होता है एक ना, लाइक लॉन्ग केस होता है, एक शॉर्ट केस होता है, 2 शॉर्ट केसेस होते हैं, कहता आप इस 3 इस पे फेल हो गए, 4th आपका नंबर है। तो मेरे को ऐसा बोल भी दिया, मैंने कोई बात नहीं, मैं डरता नहीं था कभी, मेरे अंदर बाबा की याद होती ना हमेशा, जिसे जिसके अंदर बाबा साथ होता है उसको डर नहीं लगता, किसी दुनिया में किसी बात से डर नहीं लगता, तो मेरे को डर नहीं लगा था। तो जैसे बाबा ऐसे बुद्धि में साथ था, जैसे ना साथ में बाबा था, तो जैसे केस मिला मुझे एकदम सारी बात ऐसे बाबा अंदर से बता रहे हर चीज। लड़के तो 18-18 घंटे पढ़ने वाले यूं कर रहे थे, सिर में ऐसे खुजली होती है, जब टेंशन याद नहीं आता तो खुजली होती है ना, सिर्फ ऐसे ऐसे करते, कोई कान को ऐसे ऐसे करते, कोई यूं करते है ना, तो मैं तो आराम से कॉन्फिडेंटली मेरे को आंसर कर पा रहा था, और मैं सारा कुछ बता दिया उनको, जैसे क्योंकि मेरी प्रैक्टिस बहुत थी केस देखने की, पेशेंट देखने की, क्योंकि मैं ज्यादातर हॉस्पिटल में काम करता था, वो लोग किताबों में काम कर किताबें पढ़ते थे, मैं हॉस्पिटल पेशेंट देखता था, तो मुझे बाबा जी से मदद कर रहा था, लगातार लगातार मदद कर रहा था, बुद्धि कहीं अटकी नहीं थी, तो आराम से मैं केस सारा आंसर किया, और एग्जामिनर बहुत आश्चर्यचकित भी हुआ, और सारे केस भी मेरे बहुत अच्छे हो गए। जब मेरे वायबा का समय आया तो वायबा में मेरे को बोला कि 19 लड़कों में सिर्फ एक ही लड़का है जो कहीं भी अटका नहीं है। अब इसको यहाँ पे अटकाना है। अटकाना मीन्स इसको हमने ऐसे क्वेश्चन पूछे कि ताकि ये ना आंसर कर सके, है ना। तो बाबा ने इतनी मदद की, उसका क्वेश्चन और मेरा आंसर तुरंत तैयार। तो मतलब उसमें मुझे एमडी, फिर उसमें एमडी में गोल्ड मेडलिस्ट हूं मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे गोल्ड मेडल मिला। तो बाबा कैसे मदद करता है? अगर आप मर्यादा में, नियम मर्यादा में पक्के रहते हैं ना, तो बाबा कैसे मदद करता है? कोई भी नियम मर्यादा को तोड़ना भी विकर्म है। ऐसे तो बाबा ने एक बार मुरली में, याद होगा, बाबा कहता है बाबा को भूलना भी विकर्म है ना। मुरली में था ना एक बार, बाबा को भूलना भी सबसे बड़ी भूल है। बाबा को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ा विकर्म है। विकर्म की बहुत बड़ी परिभाषा होगी ना, नहीं हुई तो क्या करना पड़ेगा फिर आपको? अलर्ट होना पड़ेगा ना, बहुत नहीं अलर्ट होना पड़ेगा। अब एक दूसरी बात, किसी में दोष निकालना भी विकर्म है। किसी के अंदर ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों करती है, इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों होता है, इसने ऐसा क्यों होता है, इतने बाबा के बच्चे होके वैसे करते हैं, है ना, इतने पुराने होके भी ऐसे करते हैं, ड्रामा में उसका पार्ट है, ये परचिंतन है, है ना, ये भी विकर्म है ना, नहीं विकर्म है। तो आज से बंद, दूसरे में दोष निकालना बंद, पक्का सचमुच बंद या ऊपर से बंद? मुश्किल काम है ना, बदला लेने की भावना रखना, किसी ने आपको कुछ गलत किया उस बदला लेने की भावना भी विकर्म है। बाबा कहते हैं ड्रामा में कोई दोषी नहीं है, किसी ने आपसे कुछ भी किया है, धोखा दिया, तंग किया, चीट किया, आपके पैसे 5 लाख 10 लाख लेके मार लिए, वापिस नहीं कर रहे हैं, है ना, गाली दे रहे हैं रोज आपको, तो ये क्या कर रहे हैं? उसको ये कहना है तुम मुझे गाली देते हो, रोज गाली क्यों देते हो, ये भी क्या है? ये भी विकर्म है, ठीक है, क्योंकि आपने गाली दी हुई है इसलिए वो गाली दे रहा है। हाँ, थोड़ा ब्याज लगा के दे रहा है, ठीक है, ब्याज तो लगेगा ना, नहीं लगेगा ब्याज तो लगेगा ना। 100 साल पहले गाली दी थी ना, अब 100 साल पहले गाली दी थी तो एक गाली कितनी हो गई? नहीं हुई क्या? मैंने शायद पहले क्लास में बताया था, सुना होगा कभी आपने, आपने 1000 रुपए किसी से उधार लिया 100 साल पहले, गीत होता है ना, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, वही साथी साथ रहते ना, जो 100 साल पहले वाले होते ना, वो साथी बच्चे बन के आ जाएगा, पति बन के आएगा, पत्नी बन के आएगा, दोस्त बन के आएगा कोई, है ना, माँ बाप बन के आ जाएंगे। तो 1000 रुपए लिया था, वापिस नहीं किया, तो ब्याज कितना हो गया, कितना हो गया? नीचे हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछा था, ब्याज पहले बहुत रेट होता था, 20-25% होता था पहले ब्याज, ना बंधुआ मजदूरी का जमाना था उस समय ना, तो बहुत ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज होता था, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता था। तो अभी तो 30 साल से कम ब्याज हो गया है ना, पहले तो बहुत ब्याज था। तो उसने बताया कि 52 करोड़ 48 लाख रुपये ब्याज होता है। तो 1000 रुपये का ब्याज कितना हुआ? 52 करोड़ 48 लाख, सोचो आप कितना ब्याज है। तो 1000 रुपये देना पड़ेगा, पर 1000 रुपये दे सकते हैं पर ब्याज। और योग से क्या होता है, मतलब योग से क्या होता है, बाबा की याद से क्या होता है, यथार्थ याद से क्या होता है? सिर्फ ब्याज माफ होता है। क्या माफ होता है? सिर्फ ब्याज माफ होता है। 1000 रुपये फिर भी देना पड़ता है, राइट? मतलब जो विकर्म किया वो तो देना ही पड़ेगा, वो तो आपको चुकतू करना ही, वो तो कितने भी आप बड़े बन जाओ, किसी भी तक पहुंच जाओ, देखो दादियों को भी देखो चुकतू करना पड़ता है, बड़े भाई बहनों को चुकतू करना पड़ता है ना शरीर से, तो वो तकलीफ आएगी, बीमारी आएगी, कभी वो माफ नहीं होता है। कि तो विकर्म विनाश का मतलब क्या है? सिर्फ ब्याज माफ होना, ठीक है, ये भी ध्यान रहे, विक्रम विनाश का मतलब क्या है? सिर्फ ब्याज माफ होना, मूलधन कभी माफ नहीं होता है। आपने 100 साल पहले गाली दी थी, अभी कितनी गाली हो गई हिसाब लगाओ, मतलब एक गाली दी होगी, अब वो सुबह शाम गाली देगा आपको रोज बिना नागा, है ना, है ना, और आपको सहनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप बाबा की याद में रहते तो क्या होगा, तो वो एक्स्ट्रा गाली मिलनी बंद हो जाएगी। ठीक है, एक दी तो एक ही मिलेगी, वो आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के वो भूल जाएंगे कि गाली देना भूल जाएंगे। ठीक है ना भाई, आपने किसको दुख दिया होगा एक बार तो आप कितना दुख मिलेगा बोलो, कितना मिलेगा, 100 गुना नहीं, 1000 10000 गुना होगा। तो इसलिए ध्यान रहे। और अब योग से क्या होगा, बाबा की याद से, यथार्थ याद से क्या होगा, वो भी यथार्थ याद, ऐसे वैसे याद नहीं, यथार्थ याद से क्या होगा आपका, वो ब्याज खत्म होगा। अब ब्याज कितना, अगर मान लीजिए आप, इसलिए जो बाबा कहते ना श्रीमत, बाबा की श्रीमत डायरेक्शन फरमान 100% से फॉलो करेंगे तो 52,48,00,000 माफ होगा। सुना, मैं तो एक एग्जांपल दिया पैसे का, बाकी दुख का, टेंशन का, चिंता का, परेशानियों का, शरीर में बीमारियों का, मन की बीमारियों का, वो सब हिसाब किताब कब माफ होगा, उसका ब्याज सिर्फ माफ होगा, वही कब माफ होगा, पूरा माफ कब होगा, जब आप 100% 100% बाबा की श्रीमत के अनुसार अमृत वेला, मुरली, सारा दिन अटेंशन और सोने के पहले पोता मेल बाबा को सच्चा सच्चा देंगे, तो सच्चा सच्चा चार्ज, जैसे कल की मुरली सच्चा सच्चा चार्ज देना देंगे, तो इसमें ना आलस्य चाहिए ना अलबेलापन चाहिए। ठीक है, अपना दोष दूसरों पे रखना, बदलाने की भावना रखना, शक करना भी विकर्म है, इसने ऐसा किया होगा, ये ऐसा करती होगी, इसने ऐसा सोचा होगा, अनुमान लगाना भी विकर्म है, चिंता करना भी विकर्म है, डरना भी विकर्म है, डर के कोई काम करना ये भी विकर्म है। बाबा के बच्चे और डर के काम करें कभी नहीं, चिंता में आके काम करें नहीं कभी नहीं, बेफिक्र होके काम करें, निर्भय होके काम करें ना, जल्दीबाजी में आना भी विकर्म है, जल्दी प्रेशर महसूस करना, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, ये काम इसी ढंग से होना जैसे मैं को ऐसा होना चाहिए, क्यों ऐसा क्यों होना चाहिए, सबके हिसाब से जो ठीक लगे वो होना चाहिए, एक्यूरेट उस वही कहेंगे जो सब में सब में सब सब में सब खुश हो, मेरे हिसाब से ऐसे हो जाए और दूसरों के हिसाब से गलत हो तो वो भी तो गलत है, सबकी राय से होना चाहिए इसलिए। तो बाबा ने कल कहा ना विश्व महाराजन अभी बनना है क्या, वरदान था ना परसों, विश्व महाराजन अभी बनना है कब बनना है, अभी बनना है भविष्य में बनना है क्या, अभी बनना है, कई लोग अभी भविष्य विश्व महाराजन बनकर बैठ जाते हैं, बैठे बैठे ऑर्डर करते हैं, अभी विश्व सेवा था अभी बनना, किसी सेवा लेनी नहीं, जहां तक उस किसी सेवा मत लो, शरीर कमजोर है वो अलग बात है, किसी की मदद करना लेना है करना, शरीर आपका ठीक नहीं, हाथ पैर ठीक काम नहीं करते, तकलीफ शरीर में बहुत सारी आ गई, तो भले किसी की मदद लो, किंतु आप याद रहे अगर एक सेवा लोगे 100 बार करनी पड़ेगी, किसी से एक थाली मंजवाओगे कितना होगा, मेरे को कहता है लाओ मैं आपकी थाली मांग दे, थाली उठा देते, तो मैं कहता नहीं मुझे 100 थाली आपकी मांगनी नहीं है, 100 थाली आपसे उठानी है, मैं अपनी उठा के खुद ही रख दू ना, खुद ही मांझ दू ना, नहीं तो नहीं तो क्या करना पड़ेगा, 100 मांझनी पड़ेगी ना, जितनी थाली हम दूसरों से मंजवाएंगे क्या होगा, हमारी थाली फिर क्या होगा, हम क्या करेंगे। कल बाबा ने मुरली में था ना, कल की मुरली थी ना, अंदर रहने वाले क्या बनेंगे, राजाओं के नौकर बनेंगे, अगर हम सेवा नहीं ठीक से नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे, श्रीमत पे नहीं चलेंगे, तो और बाहर रहने वाले प्रजा के नौकर बन जाएंगे, क्या नौकर बनना है क्या, दास दासी बनना है क्या, राजयोग बनना है, राजयोग कर रहे हैं कि नौकर योग कर रहे हैं, दास दासी योग कर रहे हैं, तो ये बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है ना, तो याद रहेगा ये बात, कहां क्या 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 विकर्म होते हैं, किसी ईर्ष्या करना भी विकर्म है, कंपेरिजन करना, कंपिटिशन करना भी विकर्म है, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, किससे कंपैरिजन करें हम, बाबा को देखें, हमारे सामने एग्जांपल एक ही है ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा को देखें ना, मम्मा को देखें ना, मम्मा का पुरुषार्थ क्या था, बाबा का क्या पुरुषार्थ, किसी और को देखने की आवश्यकता है क्या, कंपेयर करना तो बाबा से कंपेयर करो ना, मम्मा से कंपेयर करें ना अपने आप, नहीं किसी देहधारी से कंपेयर करें। तो विक्रम समझ में आ गया सभी को, विक्रम। अब ये विक्रम हमें पहले ही करने बंद करने। आज बाबा ने कहा मुरली में, क्या कहा, सच्चे सच्चे ब्राह्मण। ये जो रूहानी याद की यात्रा कौन कर सकता है? हर एक नहीं कर सकता है, सिर्फ सच्चे ब्राह्मण कर सकते हैं। सच्चा ब्राह्मण कौन? सच्चा ब्राह्मण कौन? ब्रह्मा मुख वंशावली सच्चा, उसमें भी सच्चा ब्राह्मण कौन? मनुष्य माना, मनुष्य किसे कहते हैं? मनुष्य माना मन, उष्य माना मन के दास, जो मन के दास हो, मन के वश में हो, है ना, जो मन जैसा मन कहे वैसा कर लेना। मन किसका दास है? फर्दर मन का कनेक्शन किससे है? कर्म इंद्रियों से है, आंख नाक कान मुख त्वचा स्किन हाथ पैर। तो जो भी हमने किया वो रिकॉर्ड हो गया। मैंने कोई पराठा खाया, पराठे का स्वाद रिकॉर्ड हो गया। समोसा खाया, समोसे का स्वाद रिकॉर्ड हो गया। गुलाब जामुन खाया, गुलाब जामुन का स्वाद रिकॉर्ड हो गया। जो चीज का रिकॉर्ड हो गई ना अंदर, आंख जो देखी वो रिकॉर्ड हो गया। अब मन में क्या, ये मन में रिकॉर्ड हो रहा है। अब मन में रिकॉर्ड हो रहा है तो क्या मन किसके वश में हो गया? अब बार बार समोसा खाने को चाहिए, बार बार पकौड़ा खाने को चाहिए, बार बार मिठाई खाने को चाहिए, वही आवाज सुनने को चाहिए, वही चीज देखने को चाहिए, वही किताब पढ़ने को चाहिए, है ना? मेरा तकिया वही वाला मुझे चाहिए, इसी पे नींद आती है मेरे को। तो छूते हैं ना वो तकिया, नरम नरम लगता है, वही तकिया चाहिए मेरे को तो, राइट? तो मन इसके वश में है। तो आज इंसान मनुष्य माना जो इनके वश में है। कर्मेंद्र कौन सी आदत पड़ी है? विकारों की, देह को देखने की, देह के संबंधों को देखने की, देह के स्वभाव संस्कार में फंसने की, देह के पदार्थों को देखने की आदत पड़ी। तो मन को वो आदत पड़ी हुई है। तो मनुष्य वो जिसके अंदर ये बातें, जिसकी बुद्धि मन मन में ये फंसा हुआ है, राइट? क्या क्या फंसा हुआ है? देह, देह के संबंध, देह के संपर्क, देह के स्वभाव संस्कार। देह के स्वभाव मैंने बताया पांच, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और देह के पदार्थ, देह के संस्कार क्या बताए? दस बातें बताई ना, आलस्य, अलबेलापन, दूसरों में दोष निकालने की आदत, बदलने की भावना, शक अनुमान चिंता भय जल्दीबाजी और ईर्ष्या द्वेष, ना दस बातें ऐसे बताए। और भी इनके फिर बहुत बाल बच्चे तो बहुत सारे हैं इनके, आगे फैमिली बहुत बड़ी है इनकी, एक एक के दस दस होते हैं ना, तो कितने सौ हो गए ना, सौ कौरव हो गए पूरे ना, तो ये इनकी बहुत बड़ी फैमिली है आगे। तो ये मतलब ये है देह की आदतें, देहभान की आदतें, और देह के पदार्थ जो भी हमारी चीजें हैं, घर में प्रॉपर्टी है, हमारे कपड़े हैं, हमारी चीजें, पर्सनल चीजें हैं हमारी, तो हमारी बुद्धि उसी में लगी रहती है ना, नहीं लगी रहती। आपके कपड़े पे एक दाग लग जाए छोटा सा तो क्या होता है? यहां बैठोगे ना, यहां भी उस पर हाथ रख के बैठोगे, यहां यहां पर दाग लग गया, यहां हाथ लग के बैठोगे ताकि दिखाई ना दे। तो बुद्धि में दाग है ना, तो दाग, उस दाग में बुद्धि रहती है ना, नहीं मुंह पे फुंसी हो जाए, बार बार यूं यूं करते रहोगे उसको ना, नहीं, क्योंकि बुद्धि में है ना, फुंसी कहां चले गई? बुद्धि में चले गई ना, देह बुद्धि में है तो बार बार उस पर ही ध्यान जाएगा ना। थोड़े बाल भी टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे तो क्या यूं यूं करते रहोगे? नहीं, तो मतलब कितना बुद्धि में, कितना हमारा, कोई बीमार हो जाए, कोई बीमार हो जाता है ना, कोई माँ बीमार हो, बाप बीमार हो, या कोई बहन बीमार हो, क्या होगा? थोड़ी देर में भी क्लास की जाए, कैसी तबीयत है अभी, तबीयत कैसी है, मम्मी ठीक है, खाना खाया नहीं खाया, थोड़ी थोड़ी देर में बुद्धि हुई, क्योंकि बुद्धि में वो है, माँ बैठी हुई है ना, नहीं बैठी हुई, बाप बैठा है, भाई बैठा है, बहन बैठी है, पति बैठा है, पत्नी बैठी है, बुद्धि में वो बैठे हुए, ये मनुष्य के निशान है, राइट? हद में, हद में जहां रहती है, हद की चीजें, देह हद है, देह के संबंध संपर्क हद है, देह के स्वभाव संस्कार हद है, देह के पदार्थ हद में। और ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण, ब्राह्मणा बेहद, ब्राह्मणा विशाल, बड़ा। तो ब्राह्मण जिसकी मन और बुद्धि सदा बेहद में रहे वो है ब्राह्मण, राइट? ब्रह्मा, ब्राह्मणा बेहद, बेहद की मां, सबकी मां, सब मनुष्यों की मां, राइट? तो जैसे ब्रह्मा बेहद की मां है, ऐसे ही ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण क्या है? जिसकी जिनका मन और बुद्धि सदा बेहद में रहे। तो ब्राह्मण माना ही बेहद क्या चीज है? आत्मा बेहद है कि हद है? आत्मा हद है बेहद है कि हद है? बेहद है ना, ना दिखाई देती है, ना पकड़ सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना उसको मतलब छू सकते हैं, ना जला सकते हैं, और एक सेकंड में कहां से कहां, और कितनी पावर है उसके अंदर, इतने बड़े शरीर को चला रही है, और एक जन्म को नहीं 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, घिसता भी नहीं है, एक्यूरेट है, हूबहू 5000 साल पहले जैसे हम बैठे थे इस समय 1:10 पे ऐसे ही बैठे थे, आप जिस पोज में बैठे ऐसे ही बैठे थे, जो सोच रहे हो वही सोच रहे थे, एक्यूरेट है बिल्कुल, जरा भी आगे पीछे नहीं है, इतना भी आगे पीछे नहीं होता है। तो ये बेहद है शिव बाबा, 733 करोड़ आत्माओं का कैसे पूरा हर हिसाब किताब उसके पास है ना, एक सेकंड में चला जाता है, एक सेकंड में आ जाता है, सारा काम कर देता है और सबको एक साथ अनुभव करा देता है ना। कभी सूक्ष्म वेतन में जाओ शिव बाबा बिजी मिलता है क्या? लाइन लगी होती है वहां पे क्या? बच्चे तुम्हारा इसके बाद नंबर आएगा ऐसे होता है? अभी 10 लोग खड़े हैं, 11वां नंबर तुम्हारा है, ऐसा होता है क्या? भीड़ लगी होती है, बहुत लोग जाते हैं सुबह सुबह, गुरुवार का भोग भी होता है, कितने कम से कम 10,000 सेंटर पे तो भोग लगता है, 10,000 बहनें भोग लेके जाती है, 10,000 मान लाइन लग जाए वहां पे, तो कितना भोग में नंबर आते आते 12 बज जाए, सुबह 8 बजे जाए तो मतलब जल्दी जल्दी भी कह रहे तो 4 घंटे तो लगेंगे नहीं, 10,000 को नहीं लगेंगे, ज्यादा सुबह भोग लगाने बैठे के शाम हो जाएगी, कभी ऐसा होता नहीं ना, बाबा बैठा सा आपके लिए बैठा, आओ बच्ची आओ बच्ची आओ, आओ क्या लाई हो, कौन सा भोग लाई हो, क्या लाई, कैसे कैसे क्या समाचार है ना, कैसे बाबा आपसे ही बात कर रहा होता, बस आप ही होते हो और कोई होता नहीं है ना। बाबा कभी कभी किसी आत्मा को इमर्ज करता है, दादियों को किसी को इमर्ज करता है, वो अलग बात है, किंतु जैसे आप ही हो तो कितना मतलब आपके अंदर से कैसे बाबा करता है, तो बेहद है कि हद है, तो बेहद है ना बाबा। और बाबा ये जो आत्मा के जो हमारे जो संबंध है बाबा के साथ, वो क्या हद है बेहद है, एक संबंध नहीं है। आप कभी कोई कह सकता है, मान लो कोई आपकी, मान लो कोई माताएं हैं हमारी, माताएं है, आपका पति है, जैसे आप पति को आप भाई कह सकते हो क्या, मां कह सकते हो क्या, पिताजी कह सकते हो क्या, बेटा कह सकते हो क्या, बेटी कह सकते हो क्या, शिव बाबा को सब कुछ कह सकते हैं, है ना, उसी को माँ भी कह दो, बाप भी कह दो, टीचर भी कह दो, गुरु भी कह दो, भाई भी कह दो, सखा दोस्त भी कह दो, है ना, सर पति भी कह दो, पत्नी भी कह दो, कुछ मर्जी कह दो उसको, है ना, बच्चा भी कह दो, है ना, डॉक्टर भी कह दो, सर्जन भी कह दो, है ना, जो भी कह दो, और कह नहीं खाली दो, वो उस वो उसको अनुभूति कराता है आपको, प्रैक्टिकली कराता है, प्रैक्टिकली निभाता है और हर जगह कराता है। ये नहीं कि आपको स्पेशल जगह, आपको कोई मान लो आप कहीं पर हो, प्लेन पे हो, प्लेन के अंदर बैठे हो, आप अकेले हो, आपकी मां साथ है क्या, पति साथ है क्या, बेटा साथ है क्या, अकेले हो ना मां तो, किंतु बाबा उस प्लेन में भी साथ है, नहीं बाबा प्लेन में साथ है कि नहीं है, वहां बुलाओ तो आ जाएगा नहीं आ जाएगा, कि मुश्किल है वहां आना उसको, नहीं प्लेन में कैसे आऊं मैं, अभी ऊपर हवा में कैसे आऊंगा, नीचे उतरेगा तो आऊंगा ना, प्लेन नीचे उतरे तो आऊं ना, हवा में कैसे आऊं, वो तो दरवाजा बंद कर रखा है उन्होंने, कैसे आऊंगा, खिड़की भी बंद है तो खिड़की खोलना मैं आता हूं, ऐसे थोड़ी ना, वो तो बाबा तो हर जगह नहीं, मैं कभी कभी अपने ऐसे बातें करता हूं ऐसे ना, इसलिए आपको बता रहा हूं कैसे बात करता हूं, आप ऐसे बात करते हो बाबा से, ऐसे बात करते हो क्या जैसे मैं बात करता हूं, ऐसे मतलब बाबा हर जगह साथ आ जाता है ना, हर जगह अवेलेबल है, एवरी टाइम एवरी मिनट एवरी मोमेंट, कहीं बाथरूम में हो वहां भी साथ है, और हर संबंध से साथ है, तो इसलिए बेहद है बाबा से, हमारे संबंध बेहद है, राइट, अनलिमिटेड है ना। और फिर हमारा ड्रामा, संसार रूपी ड्रामा नाटक भी तो अनलिमिटेड है ना, हमारा किस आत्मा से क्या हिसाब किताब पता ही नहीं ना, जैसे हमने रामायण होती है रामायण, जैसे रामायण में देखा ना सीरियल ना, रामायण में देखा होगा ना राम भी है लक्ष्मण भी है हनुमान भी है सीता भी है और लक्ष्मण कौशल्या केकई मंथरा सभी है ना, उधर राम भी है उधर रावण भी है मेघनाथ कुंभकर्ण और कौन कौन श्रुतनखा मंदोदरी सभी है। कि तो अपने यहाँ क्या प्रॉब्लम क्या होती है वहां पे अलग अलग कैरेक्टर दिखाए तो हमारे घरों में क्या होता है हमारे घरों में अभी राम है अभी रावण बन जाता है अभी देखो तो अभी तो बना लक्ष्मण अभी देखो मेघनाथ बन गया अभी देखो कुंभकर्ण उठता ही नहीं है आवाज देते रहो ढोल बजाते उठेगा ही नहीं अभी सीता है देखो अभी शूटनागा बन जाती है अभी क्या करो ऐसा होता नहीं होता बताओ ऐसा होता नहीं होता एक क्षण में कैरेक्टर बदल जाता नहीं ऐसा होता नहीं? ये जो है ये हमारा बहुत ये ड्रामा है ठीक है ये ड्रामा है तो बेहद है कि नहीं है एक क्षण में बदल जाता है ना तो इसलिए जो अब ये समझने की बात है कि जो ना ये जो एबीसीडी में कहते हैं एबीसीडी ज्ञान माने एबीसीडी ए फॉर आत्मा बी फॉर बाबा सी फॉर कनेक्शन डी फॉर ड्रामा तो ये जो एबीसीडी है ना ये बेहद है। तो ब्राह्मण माना क्या सच्चा ब्राह्मण माना सच्चे ब्राह्मण का मतलब क्या सच्चा ब्राह्मण वो जिसके दिल जिसके बुद्धि में क्या रहे सदा ये एबीसीडी रहे क्या रहे ये ज्ञान रहे ये मूल्य रहे निरंतर बुद्धि में यही चलती रहे चलते फिरते आज बाबा ने क्या कहा चलते फिरते हर समय क्या रहना चाहिए बाबा को जरूर याद करना नहीं तो विक्रम विनाश नहीं होंगे और विक्रम विनाश नहीं सजाएं खानी पड़ेंगी हर कर्म करते बाबा की याद रहे तीसरे पेज पर बीच में दो लाइन है तीन लाइन है ना बीच में आपको याद है तीसरे पेज पर बीच में लाइन है तीन लाइन है तो आपको यह भी याद होनी चाहिए अगर मुरली आपके हाथ में है तो मुरली ऊपर क्या है बीच में क्या है नीचे क्या है ना मुरली मैं हमेशा ध्यान रखता मुरली जो यथार्थ याद क्या है विक्रम विनाश कैसे होंगे विक्रम विनाश इस मुरली से होंगे ठीक है एक सत्य से होते हैं विक्रम विनाश ना सत्य क्या है सत्य की परिभाषा क्या है सत्य माना सत्य दो बातें हैं सत्य सत्य एक तो अविनाशी होता है मतलब वो कभी खत्म नहीं होता एटर्नल है दूसरा सत्य कभी बदलता नहीं सत्य सिर्फ दो ही चीजें हैं एक तो परमात्मा सत्य है दूसरा बाबा की मुरली सत्य है बाकी सब कुछ असत्य है इस समय आत्मा भी सत्य है इस समय कहते सत्यम शिवम सुंदरम शिव ही सदा सत्य है सदा सत्य माना सदा अविनाशी भी है पूरा कल्प बदलता भी नहीं है राइट और हम क्या है हम आत्माएं क्या है आधा कल्प सत्य है आधा कल्प असत्य है आधा कल्प तो हम एकदम सत्व प्रधान रहती हैं मतलब हम पवित्र रहते हैं और आधा कल्प क्या होते हैं असत्य माना हम तम प्रधान बन जाते हैं विकारी बन जाते हैं एक जैसे नहीं रहते हैं ऊपर नीचे होते रहते हैं। फिर शिव ही सदा सुंदर है मतलब सदा पवित्र है और हम आत्माएं आधा कल्प सुंदर है और आधा कल्प श्याम है मतलब अपवित्र बन पतित बन गई ना राइट तो शिव इस समय दो ही चीज सत्य है क्या क्या सत्य है बाबा और बाबा की मुरली राइट तो अगर मुझे अपने विक्रम विनाश करने हैं तो एक तो बाबा और बाबा की मुरली दो चीज सदा साथ रहनी चाहिए बुद्धि में मन में राइट अब बाबा की याद क्या है ये सत्य को जो याद माना योग माना याद और इसको इंग्लिश में कहते हैं मेडिटेशन ये याद या योग या मेडिटेशन क्या है ये कुछ और नहीं है ट्रूथ को रियलाइज करना ही सत्य को रियलाइज करना ही मेडिटेशन सत्य को अनुभव करना ही याद है राइट किसको याद करना है सत्य को याद करना ही सत्य को अनुभव करना फील करना वो है मेडिटेशन या याद इसके द्वारा यही यथार्थ याद है ठीक है इमेजिन करना याद नहीं है, मैं आत्मा बिंदु हूं, शिव बाबा बिंदु है, वहां से किरणें आ रही हैं, शांति आ रही है, प्यार आ रहा है, खुशी आ रही है, खुशी किरणें आ रही है, प्रेम की खुशी की किरणें आ रही है, आनंद की किरणें आ रही है, ये याद नहीं। आप दो घंटे ऐसे करते रहो, ऐसे याद है, याद याद ही करते रहो तो क्या होगा। मैं देखा है दो दो घंटे भाई बहन याद करते हैं बैठ के, किरणें इसकी किरणें आई, अभी शांति किरणें आ रही है, अभी प्रेम की किरणें, खुशी किरणें, आधा आधा घंटा बैठ के एक एक किरण को लेते रहते हैं और क्लास के बाहर आते ही फिर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। तो एक घंटे से जो किरण आ रही थी वो कहां गई, अभी कहां गई किरण? शांति और प्रेम आया तो गुस्सा कहां से आ गया फिर वापस? अभी आपने पेट भर के खाना खाया एक घंटे पूरा और फिर कहते भूख लगी है, अभी गुस्सा माना भूख लगी है? मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं बाबा की बात बता रहा हूं। बाबा की मुरली में ये बात आती है कि रिवाइज करो, मुरली को रिवाइज करो और रियलाइज करो। आज की मुरली में भी था, विचार सागर मंथन करो। ये जो बाबा की मुरली है इसको मनन, छह स्टेप है मुरली को, योग, योग में जाने के लिए। मुरली ज्ञान है, इसका योग बनाना है, इसमें छह स्टेप है। ज्ञान और योग में क्या फर्क है? ज्ञान को अनुभव करना ही योग है। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, ये ज्ञान है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, इसको अनुभव करना यही योग है, ठीक है। और अभी दो चीजें ये समझनी पड़ेंगी। पहले थे हम कामचिता पर, कामचिता माना हम देवान की चिता पे सड़ रहे थे, जल रहे थे, लगातार जल रहे थे, जले जा रहे थे। मैं तो अब देखो, आप ध्यान से देखो, अभी थोड़े साल पहले जो आप ज्ञान में हम आए, 7 साल जैसे, कोई 2 साल से आया, कोई 5 साल से आया, कोई 10 साल से, कोई 20-30 साल से आया, आप देखो क्या चलता रहता है। एक मनुष्य के घर में जो ज्ञान नहीं चाहिए उनके मन क्या चलता रहता है? सारा टाइम देख की बातें चलती है ना, नहीं? एक खत्म नहीं है, दूसरी खत्म, तीसरी चौथी चिता आग में जल रहे हैं। वो ये देहभान की विकारों की आग में जल रहे हैं, कामचिता पर बैठे हुए हैं, निरंतर बैठे हुए हैं, लगातार बैठे हुए हैं। कोई ना कोई चिंता उनको सता रही है, कोई ना कोई परेशानी उनको सता रही है। अब हमको क्या करना पड़ेगा? अब हमको ज्ञान चिता पे बैठना पड़ेगा। ज्ञान चिता माना हर समय, जैसे बाबा ने कहा, हर कर्म करते, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय बाबा की याद। ये बाबा ने आज क्या कहा, बाबा की आज क्या डायरेक्शन है, बाबा की क्या शिक्षा है, आज बाबा की क्या श्रीमत है। बाबा ने कहा मन मन में दोहराते रहो, मन मन, आज की मुरली में भी था, कल की मुरली में भी था, सब ख्याल बंद करके मुझे याद कर। तो यही जो बाबा की जो बात है ना, ये इसको हमें बार 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 अंदर दोहराना और उसको अनुभव करना, ठीक है। तो ये जैसे इसके 6 स्टेप है, पहला है मन, पहला तो श्रवण, ने सुनी मुरली ध्यान से बाबा की क्लास में। अभी ये याद रखना कभी हमेशा, एक मैं यहां एक स्टेटमेंट और बता देता हूं बाबा की मुरली का ही। क्लास में आके मुरली सुनना ही यथार्थ ज्ञान सुनना है ना? और ज्ञान हमने सही ढंग से रिकॉर्ड हो गया, और रिकॉर्ड होने के बाद तब उसको हम एक्शन में लाना है, ठीक है। तो ये जो है बाबा ने मुरली में एक बार कहा था, याद होगा आपको, मेरे को बड़ी दादी ने भी, दादी प्रकाशमणि ने भी कहा था कि अगर हमने 1 घंटा क्लास में लेट होते हैं तो हम सत्ययुग में आने में 1 जन्म लेट हो जाते हैं, ठीक है ये बात है ना। 1 घंटा लेट तो क्लास में जन्म, 1 जन्म लेट हो जाएंगे, सत्ययुग का पहला जन्म मिस। 2 घंटा लेट तो 2 जन्म मिस। 3 घंटा लेट तो 3 जन्म मिस, राइट। 4 घंटा लेट तो, कई माताएं 11 बजे आती हैं, तो कितने जन्म लेट हो गए? 4 जन्म लेट हो गए। मैं मुरली से बता रहा हूं, कुछ अपनी से नहीं बना रहा हूं। आपने बाबा को प्रायोरिटी दो, कैसे भी करके खाना बनाओ, सुबह सुबह जल्दी बनाओ, बच्चों के लिए बनाओ, बच्चे स्कूल में जाते हैं, पति स्कूल में जाता है, कुछ भी होता है, जल्दी खाना बनाओ, उनको बना के बकायदा पैक करके गरम गरम खाना हॉटकेस में डाल दो, है ना, प्लेट लगा भी दो, सब कुछ लगा दो, मैं जा रही हूं क्लास में, मुरली में जाना है, अब क्लास में मुरली आके बाकी आती हूं 8 बजे, बना के जाओ ताकि उनको लेट भी ना हो, बच्चे टाइम पर स्कूल भी पहुंच जाए, और जाओ ऐसे करो, ठीक है। ऐसे करेंगे अभी से, 7 बजे माना 7 बजे पक्का। या जिनको 2 जना लेट आना हाथ उठाओ, 3 जना लेट आना हाथ उठाओ। अरे आ जाना, कोई अर्जेंट नहीं है ना, क्या फर्क पड़ता है ना। देख लो, मैं बाबा के रूल्स बता रहा हूं, नियम बता रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है ना। ठीक है, नहीं सत्यु के चित्र देखने को मिलेंगे, वही आप इंटरनेट पे देखोगे मुरली, सत्यु का भी चित्र देखने को मिलेगा, त्रेता में पहुंचोगे सीधे, है ना, चित्र मिलेगा। चित्र पे देखा ना आपने, तो चित्र पे देखी ना, टीवी पे देखी मुरली, टीवी पे सुनी ना, तो चित्र ही देखने को मिलेगा, है ना, अनुभव करने को नहीं मिलेगा सत्युग। अभी क्लास ही सत्युग है, क्लास ही वो युग है जहां बाबा के सामने बैठे हो। पहला जन्म यही है पक्का। मैं इसमें सबको चेक कर लेता हूं, ठीक है, कौन ऊपर ऊपर से हाँ करता है, कौन नीचे नीचे से, कोई अंदर अंदर से ऐसे ऊपर ऊपर से हाँ, पक्का करना है। ठीक है, चलो मैं इतना ही आ गया ना, मैं आने का सफल हो जाएगा मेरा, अगर आपने इतना ही कर लिया तो पक्का है ना। ठीक है, करेंगे हा? तो आप 6 बातें मैं बता देता हूं। पहली तो ये हो गई अपनी मुरली, सभी मुरली में आएंगे, जो मुरली में आएंगे हाथ उठाओ, चलो अभी रोज सारा काम छोड़ के, घर वाले कुछ भी करें, कान पकड़े, नाक पकड़े, कुछ भी करें, देखो मैं आपको एक बात अपनी बता देता हूं, चलो मैं और तो किसकी बताऊं, मैं अपनी बता देता हूं। मैं जब घर में से आता था ना मुरली सुनने के लिए, तो मैं जब तो मेरे को ना मना करते थे घर पे ना, कि भाई आप मुरली में रोज नहीं जाओ, आप इतने अस्पताल में जाओ ना, 7 बजे राउंड लो, राउंड लेके आपको दूसरे चैम्बर में जाना, वहां सब लोग डॉक्टर तो 7 बजे चले जाते हैं, राउंड ले लेते हैं, राउंड लेके और दूसरे चैम्बर में ज्यादा पैसे कमाते हैं। आप घर में 8 बजे आते हो, 8:15 आते हो, फिर नाश्ता करके 9 बजे घर से निकलते हो, फिर लेट होते हो, फिर रात को भी लेट हो जाते हो, तो मेरे को बहुत जिद करते थे। मैंने कहा नहीं देखो, मैंने पहले तो कुछ नहीं बोला, मैं बोलता नहीं था, चुपचाप रहता। तो मैंने फिर क्या किया, मेरे को पता लगा स्पोर्ट्स क्लब था रोहिणी में ना, दिल्ली रोहिणी में, मैंने स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन कर लिया। तो स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन किया, वहां का मैंने सर्टिफिकेट बनवा लिया, तो बनवा लिया और कार्ड भी ले लिया। तो फिर मैं क्या करता था घर से ना, वो मतलब नीचे शॉर्ट्स पहन के, ऊपर से पैंट पहन के, और फिर वो हाथ में रैकेट, बैडमिंटन का रैकेट लेके जाता था। तो पहले बैडमिंटन के रैकेट में वहां पे जाता, 6:30 मैं 6:45 के 6:30 भी जाता था, 6:30 बजे मैं जाके वहां पे एक गेम खेलता था बैडमिंटन की, है ना, वहां फिर वो अपनी पैंट शर्ट पहन के वापस क्लास में आ जाता था, और क्लास में मुरली सुन के अपने घर आ जाता था। तो बैडमिंटन भी खेल लिया, झूठ भी नहीं बोला, और मुरली भी सुन ली, है ना। तो मतलब आपको अपनी लगन होनी चाहिए, कैसे भी करके मुझे जाना है, स्टूडेंट हो तो भी जाना चाहिए, कैसे भी करके जाना है मुझे मुरली। स्टूडेंट तो इस जन्म के हो, आगे जाके क्या होगा, नहीं तो नाश्ता अगर आपको यूज पे यूनिवर्सिटी स्पेशल में जाना होता है, कई स्टूडेंट भी लगता है, स्टूडेंट बैठे तो उनको क्या करना है, नाश्ता पैक करा रहे सुबह सुबह, या मुरली सुनी, नाश्ता रास्ते में बस में नाश्ता कर दिया। पर लगन होनी चाहिए मुरली में जाने की, क्योंकि मुरली सबसे पहला स्टेप है, यथार्थ याद का विक्रम विनाश करने का पहला स्टेप है ना, क्योंकि बाबा की डायरेक्शन है। फिर उसके बाद मनन रिवाइज करो, जो बाबा की मुरली सुनी ना उसको रिवाइज करो, रिकॉर्ड कर लो पहले, फिर रिवाइज करो। रिवाइज कैसे करते हैं, मेरी जेब में हमेशा 2 चीज रहती है, एक तो मेरी जेब में क्या करता है मैं दिखाता हूं आपको, देखो एक तो ये तो सफेद कागज है ना, सामने से दिखाई नहीं दे अंदर क्या है, फिर ये चार्ट है, ये याद का चार्ट है ना, घंटा घंटा याद का कितनी चार्ट रहती है, ठीक है। फिर मुरली संडे वाली मुरली है ना, संडे वाली मुरली तो मैं 7 दिन जेब में रखता हूँ, 7 दिन 7 डेज अगले संडे तक है ना, फिर अगले संडे जब आती है तो फिर मैं इसको निकाल देता हूँ, और ये आज की मुरली है। तो इस मतलब ये मुरली यही मेरी जेब में रहती है, और कुछ नहीं, एक पेन रहता है बस। तो ये जो है हमें क्या करना चाहिए, जो मुरली है ना उसको बार बार, बाबा का लव लेटर जैसे होता है ना, लव लेटर है ना बाबा का, हम आत्माओं के सजनियों के लिए, तो लव लेटर कैसे पढ़ते हैं बताओ, किसके सामने पढ़ते हैं, किसी के सामने कभी पढ़ते नहीं है, आसपास देखते हैं कोई खाए तो नहीं, चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं, फिर चुपके से निकालते हैं, यूं देखते हैं ना, मुस्कुराते हैं, फिर एक लाइन पढ़ते हैं, आसपास कोई सामने से आ रहा होता है छुपा लेते हैं, तो है ना, फिर जेब में डाल लेते हैं, और फिर हाथ काटे दिल यार्डे है ना, कहते ना हाथों से फिर काम करते रहते हैं, और दिल यार्डे में दिल वहां लगा रहता है बाबा के पास, बाबा ने आज मेरे लिए कहा, बाबा ने आज ऐसे कहा, बाबा से आज के मुरली था सच्चे सच्चे ब्राह्मण रूहानी यात्रा पे हो, तो मैं रूहानी यात्रा पे हूं, है ना। तो ये जो है मैंने मनन किया ना, रिवाइज किया ना, भूल गया था, अब याद आ गया कि बाबा ने ये कहा था, मैं रूहानी यात्रा पे हूं, सच्चा ब्राह्मण हूं। चलो एक ही वर्ड पकड़ लो, सच्चा ब्राह्मण मना जिसकी बुद्धि सदा किसमें रहे, बेहद में रहे, एबीसीडी में रहे, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, सीमाना कनेक्शन, मेरे सारा संबंध बाबा के साथ है, किसी देहधारी के साथ नहीं है, देहधारी के साथ बंधन है, संबंध नहीं है, देहधारियों से हमारे क्या है, संबंध है कि बंधन है। पिछले जन्म में कर्म, पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब किताब है, कोई मेरा, मेरी मां क्यों बनी, मेरा बाप क्यों बना, मेरी पति क्यों बना, मेरी पत्नी क्यों बनी, मेरे बच्चे क्यों बने, मेरी बेटिया बेटी क्यों बनी, दोस्त क्यों बना, मेरा बॉस क्यों बना, मेरा नौकर क्यों बना, पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब है, वो बंधन है, मैं छोड़ नहीं सकता हूं, वो निभाना ही है, अंत तक निभाने पड़ेंगे, उसे लोन लिया हुआ है, मुझे ब्याज समेत वापस करना ही पड़ेगा, समझ रहे मेरी बात। अगर मैंने गाली दी तो गाली खानी पड़ेगी, महिमा की हुई तो महिमा भी खानी पड़ेगी, नहीं, कई लोग मुझे पता है झूठी महिमा कर रहा है, वो करते रहो करते रहो, वो करता रहेगा, हम सुन रहे हैं, तो वो इतना बोर हो जाते हैं, कभी सुनते सुनते फिर कहेंगे अभी क्या करें, करने को सुनो सुनो बैठो, जान नहीं देगा, अब सुननी पड़ेगी। आप सोचो जरा, मैं अपने आप को जानता हूं, कोई मेरी महिमा करे तो मैं अच्छा बन जाऊंगा क्या, और कोई मेरी बुराई करे तो मैं बुरा बन जाऊंगा क्या, है? कोई हजार मुझे गाली दे क्या फर्क पड़ता है, गाली देता रहे, अपनी जीभ खराब कर रहा है ना, तो मैं तो बुरा तो नहीं बनता, और मेरी कोई हजार महिमा करे तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे, तो मैं कोई अच्छा तो नहीं बनता, मैं बुरा हूं तो बुरा, जैसा हूं वैसा ही रहूंगा ना, तो महिमा और अच्छी की बात नहीं ना, राइट। तो ये हमको जैसे बाबा से सच्चा ब्राह्मण का मतलब ये, जिसकी बुद्धि में क्या रहे, एबीसीडी रहे, मतलब ये ज्ञान रहे, बाबा की मुरली के पॉइंट्स रहे, वो है सच्चा ब्राह्मण, राइट। तो पहले तो मनन किया, राइट, मनन करो, जैसे मैं क्या करता हूं मुरली के बाद, मुरली पूरी होने के बाद, हम तो एक अमृत वाला मुरली पढ़ते हैं, योग करते हैं मुरली पढ़ते हैं, फिर क्लास में सुनते हैं, नोट भी करते हैं, हम 45 मिनट या एक घंटा मुरली चढ़ते हैं, एक घंटा बुद्धि में कोई और बात ना आए इसलिए सुनते भी रहते हैं, सामने देखते भी रहते हैं, बाबा की फोटो देखते रहते हैं, बाबा को भी सामने देखते रहते हैं, मम्मा को देखते रहते हैं, और लिखते भी रहते हैं, ताकि एक मिनट भी बुद्धि कहीं, एक मिनट तो बहुत होता है, एक सेकंड भी बुद्धि कहीं और ना जाए, ये हमारा अटेंशन होना चाहिए। और बाबा की मैं गोद में बैठ के मुरली सुनू, बाबा की गोद का सूक्ष्म वतन में जाके बैठ के बाबा की गोद में मुरली सुनू, सूक्ष्म वतन ना शुद्ध जहां शुद्ध संकल्पों की दुनिया, तो शुद्ध संकल्प है अगर मेरे तो मैं बाबा की गोद में हूं, और रियली फील होगा बाबा की, बाबा मुझे गोद में बैठा के पढ़ा रहे। तो जब हम ऐसे करेंगे तो फिर जो है, फिर मुरली निकाला, और फिर मुरली निकाल के हम लोग एक पॉइंट निकाला, उसको पढ़ते हैं, ठीक है, और फिर उस पर चिंतन करते, चिंतन मन गहराई में जाते हैं। चिंतन का मतलब क्या है, मना मना रिवाइज किया, और चिंतन मना अब मैं कैसे बनूं, ये मैं सच्चा ब्राह्मण कैसे बनूं, बाबा मैं सच्चा ब्राह्मण कैसे बनूं, मुझे बनना है, राइट। ये है मतलब गहराई में जाना, चिंतन में चिंता लगा, चिंता तो नेगेटिव वर्ड है, चिंतन माना पॉजिटिव वर्ड है, मुझे बनना है, ठीक है, और मंथन माना कैसे बनना है, चिंतन माना मुझे बनना है, और चिंतन मंथन माना कैसे बनना है। अब बाबा मैं कैसे बनूं सच्चा ब्राह्मण, मेरी बुद्धि में तो कभी ये याद आ जाता है, कभी ये याद आता है, कभी मकान याद आता है, कभी ये वो उसका फोन आ जाता है, कभी ये काम आ जाता है, कभी वो काम आ जाता है, कभी माँ का फोन आता है, कभी बाप का फोन आता है, कभी बच्चे का फोन आता है, खींचते मेरे को, मेरी बुद्धि भी जाती है उनकी तरफ, मैं तो मनुष्य, मैं तो ब्राह्मण हूं ही नहीं, आपने कहा सच्चा ब्राह्मण बनो, सच्चा ब्राह्मण इसकी बुद्धि में तो एबीसीडी रहे, तो मैं कैसे बनूं, क्या करूं मैं, तो फिर मंथन माना अब बाबा से टच, हम ये बुद्धि बाबा से लग जाती है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बनूं, मेरे तो बहुत टांग खींचने वाले लोग हैं ना, कभी देह याद आएगी, कभी देह के संबंध, कभी देह के संपर्क, कभी देह के स्वभाव संस्कार, कभी देह के पदार्थ, चाय पीने की आदत पड़ी बार बार चाय पीने की आदत इच्छा होती है, कभी कॉफी पीने की आदत कॉफी पीने की इच्छा होती है ना, कभी पानी पीने की इच्छा होती है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, सारा टाइम बुद्धि घूमती रहती है उधर, है ना, देह के चक्कर में घूमती रहती है, ये तो आत्मा तो मुश्किल से याद आती है, बाबा तो कभी कभी याद आता है, मतलब से याद आता है ना, संबंध की अनुभूति हुई नहीं है आज तक कभी, बाप क्या होता है, माँ क्या होती है, टीचर क्या होता है, गुरु क्या होता है, ऐसी गहराई है ना। तो कैसे बाबा कैसे करूं, तो बाबा से, बाबा के पास बुद्धि वहां लग जाती है। क्या होता है, मनन करते करते मगन हो जाते हैं, जो मंथन मंथन में, और मनन फिर बाबा बाबा बताते हैं, बच्चे ऐसे करना, ऐसे करो बच्चे तुम। बाबा मुझे तो पेशेंट देखने होते हैं, पेशेंट सीरियस होते हैं आईसीयू में, बाहर पेशेंट के रिलेटिव चिल्ला रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, मैं क्या करूं, कैसे आपको याद करूं वहां पे आईसीयू में। फिर बाबा बताते हैं, बच्चे तुम ऐसे करो, तो मक्खन निकल आता है। ठीक है, अब मक्खन जो निकला, मनन मंथन पे मक्खन निकला, सिमरन माना सिमर, सिमर सुख पाओ माना सिमर का मतलब उसको उसको मन में बार बार रिवाइज नहीं करो, सिमरन माना कार्य में लगाओ। अब जो मक्खन निकला उसको कार्य में लगाओ। जैसे मान लीजिए आज की मुरली का पॉइंट है ब्राह्मण, सच्चा ब्राह्मण, सच्चा ब्राह्मण का ये मंथन क्या, मंथन किया तो मंथन में क्या निकला, ब्राह्मण माना बेहद, जिसकी बुद्धि मन और बुद्धि बेहद में रहे। बेहद क्या चीज है, मैं आत्मा, तो मुझे क्या करना है, पेशेंट देखते हुए क्या करूं, मैं अपने को आत्मा समझ के, सात गुणों से संपूर्ण समझ के, भरपूर समझ के, और मैं शिव बाबा से कनेक्शन लेकर के और उस पेशेंट को देखो, वो भी आत्मा है, उस भाव से उसको देखो, उस भाव से उसको हाथ लगाऊं, उनके रिलेटिव्स हैं उनको भी इस भाव से, उनसे बात करो। ठीक है, इस तरह से, और ड्रामा, फिर जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो होने वाला बहुत अच्छा होने वाला है, ये मैं खुद को भी ध्यान रखूं, चिंता ना करूं पेशेंट की कि पेशेंट अभी मर जाएगा क्या होगा, रिलेटिव को भी समझाऊं, खुद भी समझूं और पेशेंट के रिलेटिव को भी समझाऊं, जो इलाज है ट्रीटमेंट है वो ठीक ढंग से करूं, किंतु पेशेंट को रिलेटिव समझाऊं, देखो भगवान के हिसाब के मैं तो डॉक्टर हूं, मेरा फर्ज है इसका इलाज करना, बाकी भगवान तो नहीं हूं, भगवान का काम है आगे क्या होगा वो भगवान जाने। ठीक है, ताकि मैं अपने सिर पे बोझ लूं, मैं ठीक कर दूंगा ठीक कर दूंगा, तो मेरे को टेंशन हो जाएगी, सुना मेरी बात, बाकी तुम दुआ करो मैं दवा कर रहा हूं। इस तरह से बाबा ने पॉइंट दे दिया, तो इस तरह से मेरी बुद्धि कहां रही, एबीसीडी में रह गई, तो इस तरह से अपने आप को टच कर। ठीक है, तो मनन चिंतन मंथन सिमरन, अब ये रिकॉर्ड हो गया, जब कार्य में आया तो रिकॉर्ड हो गया, अब नई नया संस्कार बन, नई आदत बन गई, जो संस्कार पहले चिंता करने का संस्कार था खत्म हो गया, गुस्सा करने का संस्कार खत्म हो गया, इरिटेट होने का संस्कार खत्म हो गया, नया संस्कार बन गया, क्या नया संस्कार क्या बन गया, ब्राह्मण का संस्कार, देव सबको आत्मा देखने का, हम एक बाप के बच्चे हैं ये फीलिंग करने का, शांत में रहने का, प्रेम सुख आनंद शक्तियों में रहने का संस्कार। तो इस तरह से करते करते हमारे नए संस्कार रिकॉर्ड होते जाएंगे और पुराने संस्कार खत्म होते जाएंगे। ठीक है, और वो तो कह गहराई कि हम टाइम अभी टाइम भी पूरा हो गया, मेरे को भी जाना है। तो शुद्ध संकल्पों में रमण करना, जो शुद्ध संकल्पों में रमण करता है और जिसको बाप से, एक बाप से सर संबंधों के सार वाली याद रहती है, एक संबंध की अनुभूति जिन्हें बाप से की हो, माँ के संबंध की अनुभूति, बाप के संबंध की अनुभूति, टीचर के संबंध की अनुभूति, सतगुरु के संबंध, बाप टीचर सतगुरु तीन तो चीजें ना मुख्य है, तो बाप के रूप में मोटी सी बात बता देता हूँ, बाप के रूप में त्रिनेत्री, बाप ज्ञान, बाप के रूप में शिव बाबा हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, टीचर के रूप में त्रिकालदर्शी बना देते हैं, तीनों कालों का ज्ञान, जैसे आज का वरदान त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी स्थिति में रहो तो अवैध संकल्प आएंगे नहीं, अवैध कर्म ही नहीं होंगे, समर्थ संकल्प और समर्थ कर्म होंगे, समर्थ बोल निकलेंगे, है ना। तो ये जो त्रिकालदर्शी और सतगुरु के रूप में त्रिलोकीनाथ बना देते हैं, त्रिलोकीनाथ माना किसी भी लोक में हम जा सकते हैं, जब चाहे जा सकते हैं, जितना समय ठहर सकते हैं, मल्टीपल एंट्री वीजा जैसे होता है ना, जब जाओ जब चाहो जाओ, जब कोई चेक नहीं करेगा आपको, और जितना मर्जी समय रुक जाओ, बाबा के पास रुक जाओ, परमधाम में रुक जाओ, नीचे आ जाओ, सुखधाम में, सुखधाम में भी जा सकते हो, सुखधाम में जाके आ जाओ, अपना महल देख के आ जाओ, चेकिंग करके आ जाओ, है ना। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बार बार कर सकते हो, तो इस तरह से अपने अंदर करेंगे तो धीरे धीरे करते करते ये सही विधि है जिसके द्वारा आपकी स्थिति बढ़ती जाएगी, दिन प्रतिदिन विक्रमाजीत, विक्रमाजीत बनने के लिए पहले कर्मेंद्रजीत बनना पड़ेगा, अपने जो बाबा के जो नियम मर्यादाएं हैं उन पर चलना, कर्मेंद्रजीत, उठने का टाइम, अमृत वेले करने का समय, मुरली समय पर आने का समय, सात्विक भोजन करना, बाबा की याद में खाना, बाबा की याद में बनाना, हर कर्म बाबा की याद में करना, चलते फिरते बाबा को याद करना, शाम को सोने के बाद लेटर लिख के बाबा को हर समाचार देना, है ना, थोड़ी थोड़ी देर में बाबा की मुरली निकाल के कागज पे लिखो, भले आपके पास मुरली नहीं मिलती कोई हर्जा नहीं, कागज पे नोट कर लो 8-10 पॉइंट, बार बार निकाल निकाल के पढ़ो, फिर मन उस पर मन किया चिंतन मंथन सिमरण करो, वो रिकॉर्ड होता जाए। तो इस तरह से करते जाओ तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपके अंदर नियम मर्यादाएं पवित्रता 100% धारण। टीवी देखना भी बहुत बढ़िया पवित्रता है, ये मोबाइल इंटरनेट फेसबुक व्हाट्सएप ये सबसे बढ़िया पवित्रता है, ठीक है, इनको छोड़ देना चाहिए। हाँ जी, क्या करें, घंटे घंटे का कर सकते हैं ना, घंटे एक घंटे में कितने मिनट याद रही, एक घंटे पे कितने मिनट याद रहे, जैसे 4 से 5 कितने मिनट याद रहे, 5 से 6 कितने मिनट याद रहे, हम स्नान कर रहे हैं स्नान करते हैं बाबा बाबा की याद रही बाबा भूल गया, 6 से 7 कितने मिनट याद रहे, 60 मिनट होते हैं ना, 60 में से 10 मिनट याद रही, 15 मिनट याद रही, 30 मिनट याद रही, 40 मिनट याद रही, है ना, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, ऐसे रात 10 बजे तक आधा आधा घंटा या, और कोई गलती की हो तो फिर गलती का चार्ट अलग से नीचे लिख दो, ठीक है, और लेटर लिख के सोना चाहिए। एक हमेशा ध्यान देखो, बहुत बढ़िया, एक डिप्रेशन होता है ना, हमें डिप्रेशन हो जाता है, मन नींद नहीं आती, एक बहुत अच्छा इलाज है सोने के पहले लेटर लिखो बाबा को, लेटर में सारी बातें लिखो, पहले लेटर लिखने से पहले दिल में बाबा को बिठाओ, बाबा को बिठा के, ये दिल हमारा दर्पण है ना, बाबा को बिठाओगे तो दिल रूपी दर्पण साफ होता है, फिर मन में नजर आएगा क्या क्या गलतियां हुई, नहीं तो नजर नहीं आता क्या हमने गलतियां की, फिर लेटर लिख के साइन करके फिर बाबा को देखे फाड़ दो, 10 मिनट डाल दो, फिर चाट भर के और मुरली पढ़ के बाबा को याद सो जाओ, तो आपको नींद बहुत अच्छी, और 9:30 सो जाओ तो 3:30 उठ पाओगे। तो एक ये थोड़ा सा ध्यान रखें, तो पवित्रता शुद्ध सात्विक भोजन सत्संग और बाबा और दैवी गुणों की धारणा, 4 नियम 4 मर्यादाएं पक्की करना, तो आपके अपने आप देखें विक्रमाजीत बनते जाएंगे, विक्रम खत्म होते जाएंगे और हम फिर बाबा के साथ वापस घर जा पाएंगे, यही रूहानी याद की यात्रा है। ओम शांति।
बहुत 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 थैंक्स, धन्यवाद, शुक्रिया डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, डॉक्टर की